नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण 61 लोगों की मौत। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को सहायता भेजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गोलीबारी की घटना के बाद विकासशील देशों से प्रवासन रोकने संबंधी योजना की घोषणा की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने जेल में उनसे मुलाकात न होने पर अवमानना याचिका दायर की। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शानदार पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आएंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी श्री पुतिन के सम्मान में एक भोज का आयोजन करेंगी। आगामी राजकीय यात्रा और भारत तथा रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। ये विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त कार्यनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण भी निर्धारित करेगी और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेगी। रूस ने आज घोषणा की कि जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हालिया वार्ता के बाद अमेरिका ने रूस के साथ अपनी शांति योजना के प्रमुख विवरण साझा किए हैं। रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पिस्कोव ने कहा कि अगले सप्ताह मॉस्को में इस जानकारी की समीक्षा की जाएगी। श्री पिस्कोव ने कहा कि रूस यूक्रेन में संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन रूस सार्वजनिक चर्चा से बचना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने संकेत दिए हैं कि ये प्रयास शांति और सुरक्षा की गारंटी की दिशा में भविष्य के कदमों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास अफगानिस्तान के एक नागरिक द्वारा कथित तौर पर 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर गोलीबारी के कुछ दिनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यापक आव्रजन निर्णय की घोषणा की है। इस बारे में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका इरादा सभी विकासशील देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोकने का है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आव्रजन नीतियों ने देश की प्रगति को कमजोर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार इस नीति का उद्देश्य उन अवैध और अस्थिर आबादी को कम करना है। इससे पहले सीमा शुल्क और आव्रजन सेवा निदेशक जोसेफ एडलॉ ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के अंतर्गत इन देशों से आने वाले प्रत्येक नागरिकों के ग्रीन कार्ड की कठोर पुनर्जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत का नाम इस सूची में नहीं है। बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुई इस घटना में नेशनल गार्ड के एक सैनिक की कल मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
दक्षिणी सीरिया के गांव बैत जिन में इसराइल के अभियान के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई। इसराइल की सेना के अनुसार सीरिया में उग्रवादी समूह के सदस्यों को पकड़ने के अभियान के दौरान झड़प में 5 इसराइली सैनिक घायल हुए। इसराइली बल हालिया खुफिया सूचना के आधार पर अल जमा अल इस्लामिया के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए बैत जिन में दाखिल हुए थे। ये दोनों इसराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। सीरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार बैत जिन क्षेत्र में इसराइल की छापेमारी बढ़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अदियाला जेल अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना याचिका दायर की है। इस आदेश में इमरान खान से सप्ताह में दो बार मिलने की अनुमति दी गई थी। ये कदम इमरान खान से मुलाकात से आठवीं बार मना करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के नेतृत्व में धरने के बाद उठाया गया है। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शानदार पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हो गया। इसमें दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों को सम्मानित किया गया, जो इस वर्ष की फिल्मों के उत्सव का यादगार फिनाले था। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। सिल्वर पीकॉक कैटेगरी में संतोष द्वाखर ने मराठी फिल्म गोंधल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। उबे इमार रियोस को स्पेनिश फिल्म ए पोएट के लिए बेस्ट मेल एक्टर का पुरस्कार मिला, जबकि जारा सोफिया ओस्तान को स्लोवेनियाई फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स में उनके परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड दिया गया। ईरानी फिल्म मेकर हेसम फरहमंद और एस्टोनियाई डायरेक्टर टोनी स्पिल एक डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म के संयुक्त विजेता बने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी महिलाओं और युवा रचनाकारों को सशक्त बनाने में सफल रहा है। पणजी गोवा में इफी के समापन समारोह में श्री मुरुगन ने कहा कि इफी ने भारत और विश्व के बीच की दूरी को पाटा है।
इस साल इफ़ी में कई नए रंग आए हैं, ये महोत्सव को और भी निखार रहे हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। इफ़ी युवा निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। सिनेमा प्रोड्यूसर्स टू टेक अप देम टू द
ग्लोबल लेवल। भारत ने आज ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इसका उद्देश्य चक्रवात दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका को राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत मदद देना है। श्रीलंका पिछले कुछ दिनों से इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दित्वाह के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीलंका के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दित्वा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये काराइकाल से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी से 410 किलोमीटर और चेन्नई से 510 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके श्रीलंका के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। इस बीच तमिलनाडु के पम्बन समेत रामनाथपुरम जिले के निचले इलाकों में तेज बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज तटीय जिलों के जिलाधिकारियों के साथ किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक की। चेन्नई में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। एहतियात के तौर पर चिकित्सक और बचाव दलों को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। राज्य के कुछ अंदरूनी जिलों में भी रविवार बारिश की संभावना है। अभी दक्षिण जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। जलाशयों में पानी के स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण 69 लोगों की मौत। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को सहायता भेजी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गोलीबारी की घटना के बाद विकासशील देशों से प्रवासन रोकने संबंधी योजना की घोषणा की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने जेल में उनसे मुलाकात न होने पर अवमानना याचिका दायर की और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शानदार पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।